Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, 2.44। अध्याय का नाम है गीता का सार। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग में तथा भौतिक ऐश्वर्य की प्रति आप सेटल होने के बाद में शुरू करें,
थोड़े आगे आ जाइए।
सब लोग ध्यान से इस श्लोक का अनुवाद सुनिए। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य यानी कि मटेरियल ऑपुलेंस इसके प्रति अति अधिक आसक्त हो जाते हैं, ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ निश्चय से नहीं हो सकती। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश के अनुसार सम्यक आधि यथे स्फिन्नात्पन्न तत्व थायात्म सम्यक आधीयते अस्मिन् तत्व याथायतत्मम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं और जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। माया के चक्र में पड़कर वे अधिक तक पतन को प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर और एक श्लोक है 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके हम कुरु नंदना बहुशाखायतंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो भक्ति के इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने प्रयोजन में यानी अपने लक्ष्य में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरु नंदन, जिनकी मति दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है यानी कि जिनकी निश्चय दृढ़ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता के इस पहले अध्याय में, जैसे कि दूसरा अध्याय चल रहा है, इसमें अर्जुन को भगवान बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। वो ये है कि हम सब लोग जो मनुष्य बनकर यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, हम लोग का सबसे बड़ा समस्या क्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम वो ये है कि हम लोग भगवान को छोड़कर इस दुनिया को भोगने के लिए व्यस्त हैं। द बिगेस्ट डिसीज भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग और ऐश्वर्य, प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, उसको प्रसक्त कहते हैं। आसक्त यानी अटैच्ड और प्रसक्त यानी बहुत अटैच्ड, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त। तो डिफ़िकल्टी ये है कि दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं भोगने के लिए, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, प्रॉपर्टी है, यश है, फेम है, प्रसिद्धि है, फिर लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, ये प्रकार के आनंद इस दुनिया में, लाभ प्रतिष्ठा पूजा। लाभ यानी कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए, प्रतिष्ठा यानी उसका प्रेस्टीज, और उसके आगे ही आकर हमको लगता है कि हमें अधिकारी बनना चाहिए जिसके लोग हमें फॉलो करें। आपके कितने फॉलोअर हैं? मेरे 10 हैं। आपके कितने हैं? मेरे 50 हैं। अरे इतने ही हैं, मेरे तो 1000 के ऊपर फॉलोअर हैं। एंड अभी देखते ना व्हाट्सएप और जो क्या ट्विटर फेसबुक में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आते हैं, तो वो भी एक अहंकार बन जाता है, उसी में लोग फंस जाते हैं। फिर आप बोलेंगे आपके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं कहूँगा मैं 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो कहेंगे मेरा 15 करोड़ की प्रॉपर्टी, और दूसरा आदमी आके आपको सबको हंसेगा, बोलेगा मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी। और कोई बॉम्बे का दुबई का बड़ा बिजनेस मैन आके बोलेगा क्या बात कर रहे हो, 1000 में क्या होता है, मेरे पास 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो 1000 वाला, 5000 वाला और 1 करोड़ 2 करोड़ वाला, ये सबके बीच में कॉमन क्या है? ये सबके बीच में कॉमन एक ही चीज़ है, जो भी उसके पास में है वो बहुत उसमें अटैच्ड है, बहुत अटैच्ड है। ऐसे कहते हैं कि अ बेगर ऑल्सो इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। यहाँ तक कि अगर बेगर कोई बोलता है कि मैं बॉम्बे के सबसे बिजी स्ट्रीट पर भीख मांगता हूँ तो भी उसका प्राइड है। इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने अपने चीज़ में आ सकते हैं। आपका अपना अपना एक माहौल है जिसमें आप लोग आ सकते हो, हम भी अपने अपने जगह में आ सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम क्या है? पाप तो नहीं कर रहे हैं, किसी को मार तो नहीं रहे हैं, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, अपना अपना माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब चीज़ से दुख पैदा होता है। सुख मिलने की आशा रहती है, लेकिन सुख मिलने की आशा में हम प्रयास करते हैं और हाथ में दुख आता है। अब भगवान कहते हैं कि जब तक इन चीज़ों की आसक्तियों से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अभी उनको प्राप्त करने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो है यहाँ पर, उनको क्या जरूरत है प्राप्त करने की? उनको प्राप्त करने की जरूरत यह है कि कुछ सच्चा आनंद उनके चरणों में है। बाकी जिस जिस पीछे हम जिस चीज़ के जिससे हम भाग रहे हैं वो सब टेम्पररी आनंद है। वो आज आपको आनंद देगा तो कल नहीं देगा। जब तक लड़की बोलेगी मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, दिन रात तड़प रही है, पढ़ाई कर रही है, एडमिशन हो गया तो कुछ दिन आनंद मिलेगा उसको, उसके बाद में फिर एग्जाम, फिर यूनिट टेस्ट, फिर कंपटीशन, फिर ये एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम, फिर यहाँ एग्जाम देना है, फिर रात को क्लिनिक जाना है, 12 घंटे पढ़ाई करना है, सारा सुख समाप्त हो जाता है। अब बोलेंगे उसको शादी करनी है तो लड़का पसंद किया, बहुत अच्छा लड़का, होनहार, पढ़ा लिखा, अमीर, सेटल्ड, सब कुछ है। तो ऐसे कहते हैं कि शादी होने तक रियल आनंद रहता है, कि शादी होने वाली है, एक इट इज़ कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी हैप्पीनेस। वो होने वाला है, मैं जलेबी खाने वाला हूँ, मैं अभी दुबई जाने वाला हूँ, मैं अभी अमेरिका जाने वाला हूँ, इसी में आनंद रहता है। लेकिन एक बार वहाँ पहुँच गए तो आनंद समाप्त होना शुरू हो जाता है। कैसे ना, भगवान ने यहाँ पर हर चीज़ ऐसे ही बनाई, इसमें खाली आनंद का आभास है। आभास यानी कि फीलिंग है, फीलिंग खाली, आनंद आएगा। ऐसा मैं करूँगा अगर मेरा पति बहुत पढ़ा लिखा और अमेरिका में रहेगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, ऐसा एक आभास रहता है। लेकिन सत्य में ऐसा नहीं रहता है। आपको लगेगा कि मेरे पास खाली अभी 1 ही करोड़ रुपया है, बॉम्बे में कैसे जाऊँगा, अभी क्या करूँगा जाके, कम से कम 10 करोड़ होना चाहिए। लेकिन वो होने के बाद में भी सुख नहीं मिलता यहाँ पर कभी। सब लोग यहाँ पर सुख के लिए तड़पते रहते हैं, और जो जब तक उनको जो जब चाहिए उनको वो मिलने के बाद भी वो और उनके अंदर प्यास बढ़ती रहती है। कभी समाधान नाम की चीज़ होती नहीं है दुनिया में। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि सब लोग ना, मैं कॉलेज में रहते थे ना, तो सब लोग को सिगरेट पीने का थ्रिल था, एकदम ऐसे यार लाइक थ्रिल्ड। लेकिन जो उस समय उनको थ्रिल का अनुभव हुआ वो आज वो चेन स्मोकर बन गए, लेकिन उनका अभी उसका अनुभव नहीं होता है। अभी खाली एडिक्शन हो गया उनको, आसक्त हो गए हैं, अभी उसके बिना चलता ही नहीं है उनका। सुख तो है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके बिना चलता ही नहीं है, और नुकसान जो है वो होते रहता है। तो धन कमाने में क्या नुकसान है? धन एक ऐसी वस्तु है जो आपको ना केवल सुख का आभास देती है बस, क्योंकि धन में ऐसी चीज़ ऐसी भगवान ने बना के रखी है कि आपके पास एक्स अमाउंट का धन है तो आपके सामने एक आदमी आएगा जो उसके पास आपके अधिक धन होगा, और वो जब आप बनोगे उसके जैसा ज़्यादा वाला धन वाला, तो आपके सामने और एक आदमी आएगा जो उसके भी अधिक धनवान होगा। कोई एंड नहीं है इसका, कोई भी एंड नहीं है। जब मैं सऊदी अरब में गया था तो मुझे एक तनख्वाह थी, फॉर एग्जाम्पल, یہ میرے لیے بہت بڑی تنخواہ دی، میں اتنا خوش تھا. لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میں ایک دم بیسک منیمم سیلری میں ہوں، اور مجھ جیسے ڈاکٹرز وہاں پر بہت سارے ہیں جو مجھ سے 3 گنا 4 گنا 10 گنا سیلری لے رہے ہیں. تو میری خوشی سماپت ہو گئی. بس ایک تنخواہ لیا تو مجھے بہت آنند آیا تھا، اس کے بعد میں آنند سماپت ہو گیا، کیونکہ ترنت میرے سامنے ایسی استھتی کھڑی ہو گئی، بھگوان نے کھڑی کر دی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اس میں کیا ہے، واٹ از دیر ان دس. اسی لیے بھوگ میں لگنا اور آسکت ہونا اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے سوروپ کے خلاف ہے. آپ شانتی سے سنیے، آرام سے سنیے، وہ سب ہمارے سوروپ کے خلاف ہے. ہمارا سوروپ کیا ہے؟ سچیدانند. ہمیں ٹیمپرری چیز پسند نہیں ہے. ست کا مطلب کیا ہے؟ اٹرنل، جو بھی ہم کو پرماننٹ چاہیے. اور یہاں پر ہر چیز ٹیمپرری ہے، ایک دم الٹا ہے نا. میں نئی پینٹ لے کے آیا تو آج میں ایسا پہنوں گا کہ دھول میں بیٹھوں گا نہیں، کچھ دیکھوں گا، کچھ فولڈ تو نہیں پڑ رہا ہے. 4 مہینے کے بعد میں کدھر بھی بیٹھوں گا، مٹی میں بیٹھوں گا، زمین پہ بیٹھوں گا، کچھ بھی بیٹھوں گا، بولے بور ہو گیا اس کو، دھول پھینک دو اس کو. ابھی آپ اچھا ہے، ابھی خراب نہیں ہو گیا، لیکن پہن کے ہی بور ہو گیا اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پرماننٹ آنند کی کھوج ہے جو اس دنیا کی وستوؤں میں نہیں ہے. تو تھوڑی دیر ٹکتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر ست، اور اس کے بعد میں چت. چت کا مطلب کیا ہے؟ نالج. ہمیشہ ہم کھوجتے رہتے ہیں، کچھ نیا نیا چیز سیکھنے کو کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تک بھگوان کے وشے میں جانکاری نہیں کرتے ہیں تب تک ہماری گیان کی جو ترشنا ہے وہ اترپت رہتی ہے. خالی جان کے آپ کو سمادھان پراپت، اور جاننا چاہیے. وہ مون پر کیا ہے، وہ چاند پر کیا ہے، ادھر منگل پر کیا ہے، ادھر گرو پر کیا ہے. ادھر سے مٹی لے کے آتے ہیں، لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، اور 10-50 گرام مٹی لے کے میوزیم میں رکھتے ہیں. بتائیے، اتنا مٹی لانے کے لیے ہم نے 1,000 ملین ڈالر خرچ کیا ہوا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، چلے جائے گا، پرابلم نہیں. لیکن لاسٹ میں کیا ہے؟ آنند. آتما کا سواو ہے کہ ہمیں ہمیشہ آنند چاہیے. سکھ اور دکھ کا لیول الگ ہے. سکھ کا تو اپوزٹ دکھ ہے، اور دکھ کا اپوزٹ سکھ ہے. یہ دے آر میوچل فرینڈس، بٹ ہمارا متی جو ہے اس کے اندر نہیں رہتے. آنند ایبسولوٹ کنسیپٹ ہے، ہم کو آنند کی آوشیکتا ہے. اور وہ ہمارا جو سواو ہے آنند کا، وہ اس دنیا میں ہمارا سواو ہمیشہ ٹھوکرے کھاتے رہتا ہے، کیونکہ ہم کو آج جو مل رہا ہے وہ تھوڑا دیر خوشی دے گا، وہ کل دکھ دے گا. جو چیز سکھ دے رہا ہے وہی دکھ کا کارن بن جاتی ہے. یہ ہمارے دنیا کا سواو ہے. اور بھوگ میں یہی ہے، بھوگ آپ آج چیز لے رہے ہو، آپ کل وہی بھوگ لوگے تو آپ کو اس کا آنند نہیں آئے گا. اب یہاں پر ایک سویٹ ملتا ہے بکلاوا، بولے آپ کو بکلاوا عربک سویٹ ملتا ہے، پہلی بار کھاؤ گے، فرسٹ ٹائم، یہ عربین سویٹ ہے، اتنا آنند آئے گا آپ کو. سب جگہ جہاں جہاں جا رہے ہو بکلاوا کھا رہے ہو، بعد میں لیکن کیا ہوتا ہے، بور ہو جاتا ہے اس میں. وہی چیز جو آپ کو ایک سمے خوشی دیتی ہے، وہی چیز دوسرے بعد میں خوشی دینا بند کر دیتی ہے. کیونکہ ہم لوگ جو آتما کے سر پر آنند دینے والی وستو ہے اس کو چھوڑ کر باقی سب وستوؤں میں آنند کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کو جیون کے ادیش کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ جیون کا ادیش بھگوان کی پراپتی کرنا ہے، تو یہ بھوگ ایشوریہ پرسکتانام تیا اپرت چیتسام، جو بھوگ میں اور ایشور میں لپت ہو جاتے ہیں ان کی بدھی مایا چھین لیتی. اپرت مطلب کیا؟ کڈنیپنگ، اپہرن. اپہرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لے جانا، چھین کر لے جانا. تو جو ویکتی اپنا دماغ اس دنیا کے بھوگ لینے میں اور ایشور میں لگا لیتے ہیں، ان کی بدھی جو بھگوان نے دی ہوئی ہے ان کو سمجھنے کے لیے، اس کو مایا چھین لیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ویوسایاتمکا بدھی ہی سمادھو نہ ودھیتی. پھر جو ہم کو بھگوان کے چرنوں میں لین ہونے کے لیے، ایکاگر ہونے کے لیے آوشک ہے، ایسا نشچے ہمارے اندر نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دیش ودیش میں لوگ رہتے ہیں نا، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ان کا مائنڈ جو ہے نا، جیسے بچے کیسے کھلونے میں ان کا مائنڈ پورا لگا رہتا ہے، ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ کھیل کھیلنا اور کھلونا. آپ بولے کہ سانس کرنا ہے, بال دھونے ہیں, برش کرنا ہے, تو نہیں, ان کو کھیلنے میں صبح اٹھتے ہی چالو ہو جاتے. اور ان کو آپ کچھ کام کر رہے ہیں, مہمان آئے, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, ان کا مائنڈ جو کھلونے میں اور کھیلنے میں لگا ہوا ہے وہ کچھ نہیں پڑھائی کر سکتے. ان کو بہت بار ڈانٹنا پڑتا ہے, پیٹنا پڑتا ہے, پھر وہ پڑھائی کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی مائنڈ جو ہے, جیسے کل میں ادھر گیا تھا پروگرام میں, تو ہمارے گھر کا جو بالک تھا وہ سو رہا تھا, تو پروگرام ختم ہو گیا اور اس کو گھر لے کے جانے کے لیے ہم نے اٹھایا تو وہ سو رہا تھا, بہت گہری نیند میں سو رہا تھا. اس کو دونوں ہاتھ میں ٹوائے کار تھی, ایسے کھلونے کی کار پکڑ کے سو رہا تھا. اور جیسے ہم نے اس کو اٹھایا سویا ہوا, تو زور سے رویا, میری کار کدھر ہے, میری کار کدھر ہے, کار کدھر ہے, بولے ہاتھ میں تو ہے. اتنا آسکتی رہتی ہے. میں آپ کو دوں گا ٹوائے کی کار, تو آپ کو اس میں آنند آئے گا؟ لے لو, لو نا, جو مرسڈیز کار کا ٹوائے ہے لو. لیکن وہ عمر میں اس سے بڑی قیمتی وستو اس کے لیے کوئی نہیں ہے. لیکن جیسے وہ بڑا ہو جائے گا نا, اس کو پھینک دے گا, بولے میں کیا کھیلنے کا چیز ہے, بچوں سے بچہ ہوں میں بھی, تو کرکٹ کے بیٹ اور بال چاہیے, پھر میدان میں کھیلے گا, سائیکل چاہیے اس کو, پھر سائیکل چلائے گا, اسکوٹر چاہیے وہ پیر مارنے والی, اس سے کھیلے گا. میں آپ کو دوں گا تو آپ کھیلیں گے اس سے, اسکوٹر پیر سے گارڈن میں نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کیا پھر وہ چیز اتنا مگن ہو کر اس میں اتنی خوشی پراپت کرا تھا, آج کیا ہو گیا اس کا؟ نہیں, جیسے ہی ٹائم چینج ہو گیا نا, اس کے اندر کا پاور آنند دینے کا ختم ہو گیا. جو آپ کو آنند دینے کی اس میں شمتا تھی وہ ختم ہو گیا. ابھی آپ کو آپ کا کھلونا کون سا ہے؟ آپ کا کھلونا پیسہ ہے. یہ آدمی کے لیے عورت ہے, ابھی اس کو شادی کرنا ہے تو اس کو ابھی وہ کھلونا ہے, وہ چاہیے اس کو. لیکن 45 آدمی کے ایج کے آدمی کو ملو آپ, بولیں گے وہ دن تھا 26 جنوری 2015 میں جب میری شادی ہوئی تھی, اتنا میں ساتویں آسمان پہ تھا. آج وہی بیوی ہے, وہی پتی ہے, وہی بچے ہیں, سب کچھ ہے, وہی نیا گھر ہے, سب کچھ ہے جس میں میں انٹر کیا تھا. آنند نہیں آ رہا اس کے اندر, کچھ نیا چیز چاہیے. ٹائم بدلے ہو گیا نا, تو وہی چیز جو آپ کو آج خوشی دے رہی ہے وہ نہیں دے گی. استھتی بدلی ہو گئی تو نہیں دے گی. اسی لیے من بھگوان کو, من منشیہ کو یہ سب جانکاری کرتے ہوئے اس میں سے من ہٹا کر بھگوان میں لگانا چاہیے. کیونکہ بھگوان میں جب من لگائیں گے تو 1984 میں جب بھگوان کے نام کا پریچے ہوا اور ان کے جپ کرنے میں جو آنند ہوا, وہ آج 35 سال کے بعد میں ہزاروں گنا زیادہ آنند مل رہا ہے اسی نام کو جپنے میں. از ناٹ امیزنگ؟ وہی منتر ہے, ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام 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 ہرے ہرے. ایسا کوئی گانا نہیں ہے جو آل ٹائم ہٹ رہتا ہے, آل ٹائم ہٹ, ایسا کوئی گانا ہے؟ ایک دم لوگ پاگل ہوتے ہیں, ایک دو سال اتنا ناچتے ہیں اس کے اوپر, بعد میں کوئی سنتا نہیں اس کو, پھر نیا گانا چاہیے ان کو. لیکن ایک ایسا سانگ ہے جو ہم لوگ اتنے سال سے گا رہے ہیں, ناٹ اونلی اس میں آنند مل رہا ہے لیکن بڑھتا ہوا آنند مل رہا ہے, تو یہ بھی سچائی ہے. دونوں آپ کے سامنے ہیں. ایک چیز ہے آج ہٹ ہے تو کل بور ہے, ایک چیز ہے آج ہٹ ہے کل بھی ہٹ ہے اور سپر ہٹ بھی ہے. تو بدھیمان ہوتی کیا سوچے گا, مجھے نا پرمانٹ آنند چاہیے, کچھ بھی بولو, کچھ بھی دکھا دو ایک چیز ایسی جو ہمیشہ مجھے آنند دیتا رہے, اور وہ کیول بھگوان ہے, وہ بھگوان کے سمبندھت چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کسی چیز میں پرماننٹ آنند نہیں ہے. جیسے ابھی آپ آرتی کرتے ہو, آپ نا 50 سال آرتی کرو, اس کے بعد میں بھی آپ کو روز نیا آنند آئے گا اس کے اندر. ہماری میرا روڈ میں ہری کرشنا کا مندر ہے, ہم لوگ روز جاتے ہیں منگل آرتی میں, اسی بھگوان کو دیکھتے ہیں, لیکن روز وہ نئے دیکھتے ہیں اور روز وہ نیا آنند ہے, اور روز نیا فوٹو نکال کے فرینڈ کو بھیجتے ہیں. بلیو می, روز سوا سا کو درشن ہوتا ہے, فٹافٹ فوٹو نکالتے ہیں, سب کو بھیج دیتے ہیں, وہ دیکھتے رہتے ہیں کیا سندر لگ رہے بھگوان, وہی بھگوان ہے. اور ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے بعد میں سیم ڈریس دوبارہ پہناتے ہیں ان کو ٹرن بائی ٹرن, لیکن وہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہی مالا ہے گلاب کی, وہی پہن رہے ہیں اسی ٹائپ کی, پیٹرن سیم ہے سب کچھ, لیکن ان کو دیکھا ہوا لگتا ہے کہ ارے کیا آنند ہے, نیا آنند ہے آج. हर साल जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हर साल जन्माष्टमी नया नया आनंद है, तो एग्जैक्टली अपोजिट है वो। यहाँ की चीज कुछ देर आनंद देती है, बाद में बोर हो जाता है। भगवान के संबंधित चीज शुरू में आनंद देती है, बीच में देती है और बाद में भी देती है, और बढ़ते हुए मात्रा में देती रहती है। तो सबसे पहला है नॉलेज, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा ऐसा है ये, और बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। और वो प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो भोग और ऐश्वर्य में लिप्त होना थोड़ा छोड़ देना चाहिए। ऐसे एक हाथ पत्थर में, ऐसे पत्थर के नीचे अटका हुआ है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसको आपको निकालना पड़ेगा पत्थर के नीचे से, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे एक हाथ पत्थर के नीचे रखा है और यहाँ से गाड़ी चला रहे हैं, तो आगे कैसे जाएंगे? कोई खींच रहा है आपको, तो आगे कैसे जाएंगे? या आपको बोलेंगे कि आपको भागना है, आपको भागना है, और चार डोरी आपके बांध को मैंने पकड़ के रखा है, बोला भागो अभी, आप कैसे भाग सकते हैं? ये हमारी एक बचपन में हमने कहानी सुनी थी, बहुत सुंदर कहानी है। वो एक शादी की बारात थी, शादी हुई ना अभी, आज भी लड़की के गांव जाके शादी करते हैं, लड़की को वहां से विदाई करके लेके आते। तो ये दूल्हा की पार्टी बोट में गई, बोट में बोट चलाते चलाते गाना गाते, शादी है ना, अपना गीत गाते हुए चले गए। वो दुल्हन के घर पे गए, वहाँ पर शादी किया, दिन भर उत्सव चलता रहा, रात को समय हुआ निकलने का, तो विदाई हो गई और दुल्हन को लेकर बोट में बैठे। तब तक अंधेरा हो गया था, लेकिन सब लोग इतने खुश थे, शादी हो गई तो इतना आनंद में थे। जवान लड़के बोले, हम लोग बोटिंग करेंगे आज। बोट वाले को बोला, आराम करो, हम लोग बोटिंग करेंगे, हमारे घर में शादी है तो हम बोट चलाएंगे। और बोटिंग किया उन्होंने, सब लोग गीत गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, म्यूजिक में बोटिंग हो रहा है, सब लोग इतना आनंद से दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। रात भर बोटिंग करते हैं, सुबह हो जाती है, तब दिखाई पड़ता है ना, सब दिखाई पड़ता है आज भी क्या है। सुबह जब होती है, जरा सी होती है, जा रहे हैं पूरी से नहीं, जरा सी सुबह दिखने लगता है, तो सबको पता चलता है कि हम लोग तो उधर ही है। जिस जगह बोट थी हम लोग चढ़ के बैठ गए उसके अंदर, और इतना रोइंग किया, इतना बोट चलाया, रात भर चलाया, इतना गीत गाया, पसीना आया, आनंद आया, नाचा उसके अंदर। सुबह उठो, उधर ही बोट है। बोले क्या हो गया? अरे वो एंकर निकालना भूल गया। इतना खुशी में पागल हो गए सब लोग, कि इतना खुशी में बैठ हो गए सब लोग, लेकिन वो एंकर निकालने का काम था ना मेन, वो रह गया उधर। देखिए मेहनत तो बहुत किया ना बोट चलाने में, इतना लोगों को चलाने में कितना मेहनत किया, बोट भी ऐसे हिल रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ी वो। क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्योंकि एंकर लगा हुआ था। आप कितना भी मेहनत करो, अगर एंकर लगा हुआ है तो आगे नहीं बढ़ सकते। एंकर क्या चीज है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोग में ऐश्वर्य में लगे हुए आप रहेंगे तो आप कितना भी जप करेंगे, कितना भी नियम पालन करेंगे, कितना भी उत्सव मनाएंगे, उधर ही रहेंगे। जब तक वो भोग का ऐश्वर्य का एंकर, क्या बोलते हैं उसको, नांगर बोलते हैं आप? नहीं नहीं, क्या लगा कर रखते ना वो बोट को जमीन के अंदर, मट्टी में, लंगर बोलते कभी। एनीवे, एंकर ANKER, जब उसको नहीं निकालते हैं तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हर बोट मीटर को लगा कर रखा ना जमीन के, पानी के अंदर गाड़ के रखते हैं, तो हमारा जो एंकर है ना बहुत गहराई में अटका हुआ है। वही एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, आपको अगर मैं बोलूँ भागो आप, और आपका दो हाथ और दो पैर बांध के रखे हैं, आप भाग रहे, आपको लग रहा है मैं भाग रहा हूँ, लेकिन आप उधर ही हो, क्योंकि लगा हुआ है दोरी। वो तो ना कल्लू का बैल कैसे रहता है, कल्लू का बैल वो गोल गोल घूमते रहता है, लेकिन वो उस चक्र के बाहर नहीं जा सकता है। मेहनत तो बहुत कर रहा है वो, कितना राउंड लगाया पता नहीं उसने, लेकिन है किधर वो? स्थाने स्थित, जहाँ पर है वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जीवन जो है वो भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए दिया है। मेहनत तो हम बहुत करेंगे, लेकिन सारी मेहनत बेकार है जब तक भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये जो एंकर है उसको हम निकालते नहीं हैं। तो निकालना कैसे है उसको? सबसे पहले हम लोग मांसाहार छोड़ देते हैं, उसके बाद में नशा छोड़ देते हैं, उसके बाद में विवाह के बाह्य संबंध व्यभिचार छोड़ देते हैं, और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते हैं, फिर झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को हार्म नहीं करते हैं, किसी को तकलीफ देते नहीं, सात्विक स्तर पर आ जाते हैं। और सात्विक स्तर पर आकर हम भगवान के नाम का जप करते हैं। सात्विक स्तर में आने की जरूरत क्या है? क्योंकि एक जगह चूल्हा जला रहे हैं और ऊपर से लीक हो रहा है पानी और वो चूल्हे पे ही गिर रहा है, तो क्या होगा? आप चला रहे हो, कितना भी लगा रहे हो, माचिस लगा रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, लगा रहे हो, थोड़ा जलता है बाद में बुझ जाता है, जलता है बुझ जाता है। वैसे अगर चारों नियम नहीं पालन करेंगे, खाते पीते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो क्या होगा? अग्नि जला रहे हैं लेकिन वो बार बार बुझ भी जा रही है, उसकी ज्वाला में रूपांतर नहीं हो रहा है। इसलिए अगर आपको रिजल्टेंट एक्टिविटी, रिजल्टेंट मोशन चाहिए, तो आपको वो बंद करना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी बंद करेंगे तो सत्वगुण पे आ जाते हैं। सत्वगुण के प्लेटफॉर्म में जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह है, वो आपको ऐसा उड़ाएगा ऊपर भगवान की ओर, नहीं तो आप उधर ही रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे और वहीं से हाथ पांव हिलाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसके चार नियम पालन करते हैं, ABCD, और भगवान के नाम का जप करते हैं। तो हमारे भक्ति का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है बहुत। ABCD, ए यानी एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। जिसके संग में रहेंगे वैसे सोचेंगे, शराबियों के साथ में रहेंगे तो बोलेंगे चलो शाम को जाके शराब पी के आते हैं, क्या अभी इतना थक गए काम करके, अभी एक पैग ले लेते हैं। आप नहीं लेते हो, लेकिन चार लोगों के संग में रहेंगे तो आप भी बोलेंगे अरे ले लो यार, क्या उसमें क्या है। स्मोकिंग के लोगों के बीच में रहेंगे, आप लेते तो नहीं, आपको आदत नहीं है, लेकिन वो लोग 10 बार आपको बोलेंगे ले लो एक तो दम ले लो, तो भी आप भी एक पफ मारेंगे। इसका जैसा संग वैसा रंग। और आप कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन गुंडा लोगों के साथ में दिखाई पड़ेंगे, लोग बोलेंगे हाँ ये भी गुंडा हो गया। आप अभी तक गुंडे नहीं बने लेकिन उनके साथ भी बैठे और घूमेंगे तो आपका भी एक लेबल लग जाए कि ये इनके साथ उठते बैठता है, शायद ये इनके बीच में का आदमी रहे। एसोसिएशन। बी यानी बुक्स, ये भगवत गीता में लेके बैठा हूँ ना, इसके अंदर परम 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 ज्ञान दिया हुआ है, अंतिम हाइएस्ट नॉलेज दिया हुआ है। आज तक इस नॉलेज का डिबेट वर्ल्ड में किधर नहीं है, चाहे आप इस्लाम के लोगों को मिलो, क्रिश्चियन लोगों को मिलो, बुद्धिस्ट को मिलो, ये नॉलेज ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इसके बारे में किसी धर्म में भी विवाद नहीं है। बाकी वो भागवत के लिए रहेगा, मानते रहेंगे, लेकिन भगवत गीता ऐसा साइंस है जो वर्ल्ड में उसके लिए डिबेट नहीं है, ये दिव्य साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसमें जो नॉलेज दिया हुआ है उसको लोग छीन छीन कर अपनी भाषा में अपना बना लेते हैं और ये कभी बदला नहीं है, और ये परमानेंट नॉलेज है, इसका एडिशन नहीं आता है, 7th edition, 8th edition, ऑगमेंटेड एडिशन, न्यू रिसर्च टॉपिक्स, ऐसा नहीं है उसके अंदर। वो जैसे बताया गया था तब से ऐसा का ऐसा ही है और आज भी एप्लीकेबल है। तो ये बुक्स जो है ना भगवान के दिए हुए, भगवान के वचन है ये। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने दिए हुए वचन है। कुरान क्या है? अल्लाह ने जो बोला बोला वो पहाड़ पर उसका लेटर्स पैदा हो गए, उसको फिर बाद में उतारा मोजेस ने उतारा, पहले वो बाइबल बन गया। तो ऐसे ही मोहम्मद को पहाड़ पर आवाज़ के रूप में अल्लाह ने कुछ बताया, वो कुरान के रूप में प्रकट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ है, वो भगवान के द्वारा बताया हुआ स्क्रिप्चर है। डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, जिसको आना है आने दो, आप सुनते रहो ध्यान से। तो जिस स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं, बुक्स, वो भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश है हमारे लिए, और जब हम उसको सुनेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। या क्या बताएं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके हम गुरुनंदना, फिर हमारे अंदर जो निश्चय की आवश्यकता है ना, दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है, ये शास्त्र पढ़ने से वो दृढ़ निश्चय पैदा होता है। हमारी बुद्धि एके हम गुरुनंदना, एक विषय पर फोकस रहती है, बंदर की तरह नहीं, कभी ये झाड़ पे पड़ा बैठा, कभी उधर ये फल खाया, कभी उधर कुछ छीन लिया, कभी उधर उधर भागा उधर भागा, पैशन हाँ रजोगुण, वैसे नहीं। एक ही हम कुरुनंदना, एक जगह पर आपको मन को बुद्धि को स्थिर करना है, वो बुद्धि आपको ये पढ़ने से प्राप्त होती है। इसलिए रोज इसको पढ़ना चाहिए। बी हो गया ना बुक्स, सी चैंटिंग द होली नेम, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उससे आत्मा के ऊपर जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के कवरिंग पड़े हुए ना, जो हमको भगवान से अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, वो साफ हो जाते हैं धीरे धीरे। क्यों ना हो, चेतो दर्पण मार्जनम, रोज साफ करते हैं, एवरी डे एक एक लेयर निकल रहा है उसका, और धीरे धीरे आत्मा चमक रही है, धीरे धीरे उसकी शाइन जो है वो प्रकट होती जा रही है। भगवान का नाम भी बड़ा विषय है बहुत, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो भगवान के भक्तों के संग में ऐसे उपदेशों को सुनकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और चौथी चीज़ क्या है? डी यानी डाइट। क्या खाना है आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या खाते हो वैसा आप बनते हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम का एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, वर्ल्ड में बहुत फेमस है, हमारे बचपन में भी फेमस था वो। उसने कहा था, यू टेल मी व्हाट यू ईट, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। आप बताओ क्या खाते हो आप, और आप कौन हो, कैसे हो, मैं बताऊंगा। हमारे हिंदी में बोलते हैं, जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपका स्वभाव, ये बहुत हद तक आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है। तमोगुणी अन्न खाओगे तो राक्षसी प्रवृत्ति पैदा होगी। ऐसा नहीं कि लाइक सिंह निकल के आएंगे और लोगों का खून करेंगे और सीता को हरण करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रवृत्ति राक्षसी रहेगी। और चटपटा खाना खाएंगे बहुत तो दुनियादारी की इच्छा रहेगी, आपको पैसा चाहिए, शरीर का भोग चाहिए, कपड़े चाहिए, मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया में घूमना है, बहुत सारी दुनिया की चीज़ें करनी है। किसी को हार्म नहीं करना है, लेकिन बहुत मन लगा हुआ है, इसके से मन हटता ही नहीं है, यही चाहिए बार बार चाहिए, और मन संतुष्ट होता ही नहीं है। और सत्वगुणी अन्न खाएंगे तो शांत रहेंगे आप, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, मीठा वचन बोलेंगे, सत्यम ब्रुहात प्रियम ब्रुहात, सत्य बोलेंगे लेकिन मधुर बोलेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, समय पर आएंगे, दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करेंगे, किसी से कुछ लिया तो वापस करेंगे उसको, अदब से बात करेंगे, मैनरिज्म से साथ रहेंगे, ये सत्वगुण का लक्षण है। आपको नॉलेज रहेगा, आप स्वच्छ रहेंगे, आप धर्मशील रहेंगे, ये सब सत्व का लक्षण है। और जब सत्वगुणी खाना खाएंगे तो सत्वगुणी बनेंगे, सत्वगुण में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग की ओर जाएंगे। रजोगुणी खाना खाएंगे और रजोगुणी भाव में शरीर छोड़ेंगे, मर जाएंगे तो दुनिया में दोबारा आएंगे भोग लेने के लिए, क्योंकि तो इच्छा पूरी पूर्ण नहीं होने, आप तक बार बार कुछ भोगना है आपको। और तमोगुणी अन्न खाएंगे तो तमोगुणी बन जाएंगे, और तमोगुण भाव में मगर शरीर छोड़ेंगे, अधोगच्छन्ति तामसः। लेकिन हमको ये तीनों गुणों में रुचि नहीं है, ना ऊपर जाने की रुचि है, ना बीच में रहने की रुचि है, ना नीचे जाने की रुचि है, हमको ये तीनों के बाहर जाना है। और वो है दिव्य गुण, वो है भगवान का धाम। वो ना सत्वगुणी है, ना रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, वो दिव्य गुणी है, बियॉन्ड। हाँ, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, अभी अगले श्लोक भगवान बताते हैं, त्रैगुण्यो विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, ये तीन गुण जो है ना, ये दुनिया के ही गुण है, यहाँ का ही है, सोने की चैन है, चांदी की चैन है और लोहे की चैन है, या आपको तीनों चैन पहना नहीं है, चाहे सोना कितना भी चमकता होगा लेकिन वो चैन आपको बांध रही है, आपको तीनों चैनों से बाहर निकल के मुक्त हो जाना है। अगर जेल में जाएंगे बोलेंगे आपको एसी मिलेगा जेल में, अच्छा फाइव स्टार खाना मिलेगा, और आधा घंटे के लिए पत्थर फोड़ना पड़ेगा, और ये ऐसा ऐसा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन आपको ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी मिलेगी, अच्छा फोम का गद्दा भी मिलेगा, आपके लिए अलग सेल बनाया है, तो आप क्या करेंगे? हाँ बढ़िया, मैं इधर ही रहूँगा। अभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलेगा? मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है मेरे। अब बुद्धू आदमी क्या बोलेगा? अच्छा है वो, जो वो सेल से ये सेल अच्छा है, ये VIP सेल है। लेकिन भूलते हैं कि वो सेल है, आपको नजर कैद बंद करके रखा है उसके अंदर, आप सजा भुगत रहे हो। तो सोने की चेन उस तरह से, सोने की चेन है लेकिन आपको बांध के रखा है उसने, आप बहुत गर्व कर रहे हो सोने की चेन है लेकिन आपको बांध के रखा है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलता है? आपको क्या चाहिए? मुझे जेल से बाहर निकलना है ना, सोने की चेन चाहिए ना, जंजीर कुछ नहीं चाहिए, चांदी कुछ नहीं चाहिए, लेट मी गो होम। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? सत्वगुण में भी टेम्पररी है, रजोगुण भी टेम्पररी है, और तमोगुण भी टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है, मुझे परमानेंट चाहिए क्योंकि मैं सत्य मेरा स्वभाव है, तो मुझे इसके बाहर जाना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, भव अर्जुना, त्रिगुण के बाहर चले जाओ अर्जुन, वहां मैं मिलूंगा आपको, और वो परमानेंट है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और परमानेंट है, और हर दिन दुगना रात चौगुना आनंद बढ़ने वाला है वहां। तो आप बोलेंगे क्या आप लोग वही कृष्ण का नाम जपते हो, वही कृष्ण को डेकोरेट करते हो, वही कृष्ण का जन्माष्टमी बार बनाते हो, बोर नहीं होता है क्या आपको? लेकिन बोर नहीं होता है, क्या करें? अगर बोर होता तो मैं उसको 35 ईयर्स करता था क्या? कुछ गाना चेंज करता, मैं नया गाना लेके आता, 10 साल के बाद एक्सपायरी डेट है, नया गाना लेके आओ, कोई नया मंत्र लेके आओ, पर जब करेंगे उसे, कुछ नया नियम बताओ कि पालन करेंगे उसे। नहीं, 35 ईयर्स हो गए अभी वही नियम पालन कर रहे हैं, वही नाम जप रहे हैं, लोग देख के हमको बोर होते हैं, तो हम लोग करके बोर नहीं होते। उसको लेते क्या वही हरे कृष्णा वही अलग अलग धुन में गाते रहते हैं, तो अलग सॉन्ग नहीं क्या आपके पास, उसी को गाते रहते हैं। अभी वो अबू धाबी में 3 दिन 12-12 घंटे गाने वाले, तो कभी लोग बोलते हैं तो एक ही सॉन्ग गाते हैं आप 12 घंटे के लिए, तो गाना चेंज करना, थोड़ा गाना चेंज कर सकते क्या? बोले नहीं, हमारे पास एक ही गाना है, वो गाने के अंदर इतना मसाला भरा हुआ है कि खत्म ही नहीं होता है। तो मैं डाइट के बारे में बता रहा था कि वही सत्वगुणी खाना जब भगवान को अर्पण करते हैं तो वह दिव्य गुणी बन जाता है, उसको कहते हैं प्रसाद, मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और वो जब खाते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है और भगवान की अनुभूति होने लगती है। एक बार प्रसाद का आपको स्वाद लग गया ना, फिर आपको बिना भोग लगाया हुआ वही खाने में अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझो खीर बहुत पसंद है और आप खीर भगवान को भोग लगाए बिना खा रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है आपको। एक बार अगर वही खीर भगवान को भोग लगा के आपने खाया ना, तो नेक्स्ट डे आपको बिना भोग लगाया खीर अच्छा लगेगा ना, कुछ मिसिंग है इसके अंदर। तो पहली बार मंदिर में गया था ना मैं, तो प्रसाद पाया बहुत पेट भर के, ये दाल में इतना स्वाद था, मैंने बार बार पूछा इसमें क्या डाला है आपने, तो बोला तुअर की दाल है, उसको उबाला, फिर उसको अदरक डाला, मिर्ची डाली, फिर तड़का लगाया, फिर उसमें राई जीरा कड़ी पत्ता हींग डाला। तो मेरे मम्मी भी करती है रोज इसे, इसमें स्वाद इतना क्यों है, बहुत देर तक पूछता रहा मम्मी को, जाके बताया ऐसा बनाना वैसा बनाना, वही करती हूँ रोज मैं। फिर दोबारा मंदिर गया अगले संडे को, पूछा क्या है क्या है, बोले एक चीज़ हम लोग करते हैं जो आप घर पे नहीं करते, वो दाल जो बनाते हैं ना तो उसको भगवान को तुलसी रख के भोग लगाते प्रेम से। तो हमने भी घर में जाकर वो जब किया तो उसमें जो स्वाद आया, तब यकीन हुआ कि ये लोग खाली डायलॉग नहीं मार रहे हैं, ऐसे बेकार की हवा की बात नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी है। अभी आज आप हमको खिलाएंगे ना, समझो बढ़िया खाना खिलाएंगे आज मुझे, और मुझे ट्रिक करेंगे और बिना भोग लगाए खिलाएंगे, मैं एक दो एक खाऊंगा, बोलेंगे माता जी पेट सही नहीं है आज, आप ये मत देना मुझे। तुरंत अंदर एक एंटीना है हमारा, वो घंटी बजेगी कि नहीं इसमें गड़बड़ है। और कभी कभी पूछते भी हैं, हाँ प्रभु जी ये ना भोग लगाना भूल गए, वो लेट हो गया ना तो पहले लगा दिया ना, ये बाद में तैयार हो गया तो ऐसे, अरे सॉरी माता जी इसको भोग लगाइए। कई बार अभ्यास होने के बाद में आपको थाली परोसेंगे ना, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा इसमें सब भोग लगा है कि नहीं लोग लगा है, ये भी आपको अंदर से अनुभूति होगी। ये सब रियलिटी है, मैं ऐसा ही कुछ आपको बहकाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, ये सब अनुभव की बातें हैं। आप जब प्रसाद खाते रहेंगे ना जिंदगी में, तो आपको सारा खाना देखकर अनुभूति होगी कि खाऊं कि नहीं खाऊं। एक बार सत्वगुण में आप आ गए और दिव्य गुण से आपका संबंध हो गया, तो आपको निचली कोई वस्तु अच्छी लगेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले फिश खाते थे, मैं साउथ इंडियन हूँ, इतना फिश पर प्रेम था हमको कि हम लोग पागल होते थे। संडे को हॉस्टल से घर पे आते थे तो वो स्मेल से ही हमारा 7वें आसमान पे जाते थे हम लोग, स्मेल से ही हमारा दिमाग इतना आनंद से भरता था कि अभी आज हम फिश खाएंगे। आज वही फिश की थोड़ी सी बू आ गई ना तो उल्टी आने लगती, क्या हो गया, वही तो फिश था, वही मेथड है, वही स्मेल है जो हमको ऐसा इंटॉक्सिकेट करता था पहले, क्या हो गया है, हमारी चेतना आज चेंज हो गई है, वो तमोगुणी थी सत्वगुणी हो गई है आज। और सत्वगुण के चेंज होने के बाद में तमोगुण का संपर्क से घृणा आती है, उल्टी आने लगती है, शराब पी के आगे आदमी गटर पे गिरा है, पूरा नशा में चूर है, तो क्या लगता है मैं तो 7वें आसमान में हूँ, मुझ जैसा सुखी कोई नहीं है, ये सब लोग घर में सो रहे हैं ना, वो सब मूर्ख लोग हैं, मुझे जो आनंद मिल रहा है वो किसी को पता नहीं। जब नशा उतरती है दिखता है अरे किधर हूँ मैं, इतना गटर में घर जाके स्नान करता है और सफ़ेद कपड़े नए पहनता है और दोबारा उस गटर को देखता है तो उसको खुद ही उल्टी आती है, लेकिन बेटा तू रात भर उधर था अंदर उसके और आनंद में भी था तुम्हारे तरफ से, लेकिन एक बार वो छोड़ दिया और उसके हायर लेवल पे चले गए वापस वहाँ से इधर देखा तो आपको घृणा हो जाएगी उससे। रंगी पंचमी होती है ना, वो रंगीली होली होती है ना, होली, आप होली में सब लोग आपको रंग लगा रहे हैं, आपको पूरा कपड़ा केस बाल सब रंग में घरे हुए हैं, और एक समय आता है कि अभी होली एंड हो गई, चलो अभी आप सब लोग जाओ घर में स्नान करो, सब लोग घर जाकर स्नान करते हैं, बाल धोते हैं और नया कपड़ा पहन के गैलरी में आते हैं, और कोई आप पिचकार लेके आएगा तो आप बोलते नहीं 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 अभी नहीं। तो जब रंग से रंगे लदे हुए थे तो आपको चलता है, लेकिन आप साफ हो गए नया कपड़ा पहना तो आपको नया रंग भी एक बूंद भी पसंद नहीं आएगा, अभी होली खत्म हो गई है। तो ये लेवल से ये लेवल पे आ गए, और ये लेवल से इस लेवल पर देखा तो आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए जो 35 साल पहले फिश अच्छा लगता था, आज उसके मुँह से भी उल्टी आने लगती है, क्योंकि आज चेतना चेंज हो गई है। ये प्रसाद का शक्ति है, वो आपको इस लेवल से उस लेवल पर ले जाएगा और आपको इतना आनंद देगा। वो हमारे जुहू मंदिर में ना मुंबई में सुबह भागवतम के बाद में एक खीर मिलती है, ओके, वो रात को बनाते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं और सुबह 4 बजे भगवान को मंगल भोग के रूप में लगाते हैं, वापस फ्रिज में रखते हैं। और भागवतम अटेंड करने के बाद में जो आए हैं उनको हाथ में इतनी सी देते हैं ठंडी, तो हाथ लगते ही ठंडा होता है, और जब खाएंगे ना इतना स्वाद है उसके अंदर। बाय द वे 40 साल हो गए, उसका सेम फॉर्मूला है, सेम इंग्रेडिएंट्स है, सेम अमाउंट है, मिल्क है, शुगर है, ड्राई फ्रूट है, सेम 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 प्रोसीजर है, बनाने का भी सेम है, कितना घंटा उसको हिलाना है, सब कुछ सेम है और टेस्ट भी सेम है, लेकिन 35 साल में कभी वो खा के बोर नहीं हुआ। वो सोचते हम लोग कि प्रभु जी वो इतना ही क्यों देते हैं आप, ज़्यादा नहीं मिल सकता क्या? नहीं प्रभु जी, वो बनता इतना ही है और सबको देना पड़ता है, तो हमको दोबारा नहीं मिल सकता है। प्रभु जी मैं उसको स्पॉन्सर करूँगा, मुझे आप बताइए वो चाहिए वो, तो नहीं प्रभु जी आपको इतना ही मिलेगा। इतना स्वाद है उसके अंदर, आज तक वो सेम टेस्ट है, लेकिन कभी हमको ऐसा लगा नहीं कि कुछ नया खीर खाना चाहिए। तड़पते लोग उसके लिए मॉर्निंग भागवतम के पास पूरा अटेंड करते हैं, लाइन में पहले खड़े रहते हो, क्योंकि भगवान ने उसको चखा है, उसके अंदर दिव्य स्वाद है। घर में वैसा ही बनाओ और भगवान को बिना भोग लगाए खाओ, आप 4 दिन बोलेंगे मम्मी बर्फी बनाओ भाई, फिर बंद बंद करो आप, ऐसा है। तो डाइट यानी भगवान का प्रसाद, और याद रखना आपका जीवन जो है ना वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बनाया है। बिना भगवान का खाएंगे ना आप तो गुणों में बंद हो जाएंगे, आप कर्मों में फंस जाएंगे, वो बार बार आना पड़ेगा, उसके कर्म का फल मिलेगा आपको। बनाया जो बनाया उसका आदमी का कर्म का फल आपको मिलेगा, उसका भावना उसके अंदर प्रवेश करेगा, गुस्से से बनाया। कभी कभी खाना खाने को बैठते ना किसी घर में जाते हैं तो 2-3 आइटम खाते ही नहीं हम लोग, और बाद में पता चलता है कि ये झगड़ा करते हुए बनाया था। घर में भी ऐसा ही है, वही सब्जी है आपकी पसंद वाली सब्जी है, लेकिन झगड़ा करते हुए बनाया ना आपको स्वाद नहीं आएगा उसके अंदर, क्योंकि आप जो भावना में हो वो भावना उसमें प्रवेश करती है। इसलिए घर में आप आओगे ना, दुनिया भर घूम के आओगे परदेश में जाके, और माँ के हाथ के दाल चावल खाएंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। क्यों? क्योंकि माँ आपके लिए और प्रेम से बनाती है, और वो दाल चावल में आप प्रेम और अपनापन अनुभव करते हैं, इसलिए आपको दाल चावल में इतना स्वाद आता है जो 5-स्टार होटल के खाने में भी नहीं आएगा। ये सब फूड का साइंस है, फूड इज़ नॉट ऑर्डिनरी थिंग। इसलिए हमारे जीवन में क्या हम लोग खाते हैं इस पर बहुत निर्भर रहता है बहुत चीज़ें। एनीवेज आप लोग एसोसिएशन ए ग्रंथ पढ़िए, बी भगवान के नाम का जप कीजिए, सी और डी भगवान के ही प्रसाद खाइए। भले आपको 5-स्टार नहीं मिलेगा, 0 स्टार, 1 स्टार, 0.5 स्टार मिलेगा, लेकिन वो स्टार जो है ना वो भगवान को अर्पण करेंगे तो वो 7 स्टार बन जाएगा। इसलिए आप उसको खाली प्रसाद खाइए, ये जीवन प्रसाद के लिए है, मांसाहार शाकाहार के लिए भी नहीं है। शाकाहारी तो कबूतर भी शाकाहारी है, ऊँट भी शाकाहारी है, बैल भी शाकाहारी है, घोड़ा भी शाकाहारी है, क्या बड़ा अचीवमेंट है उसके अंदर? नहीं, शाकाहार जब भगवान को अर्पण करेंगे और प्रसाद आहार करेंगे तो आप मनुष्य हो गए, देन यू कैन कॉल आई एम ह्यूमन बीइंग। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान को अर्पण करेंगे तो वही खाना दिव्य बन जाता है, आपको भी दिव्य स्तर पर लेके जाता है जब आप उसको खाएंगे। बस यही है, हमको रोकने वाला क्या है? भोग और ऐश्वर्य है। हमको आगे बढ़ाने वाला क्या है? भगवान का नाम है, भगवान के भक्तों का संघ है, प्रसाद है, भगवान का उपदेश है, यह आपको भगवान की ओर आगे बढ़ाएगा, और भोग और ऐश्वर्य पीछे खींचेगा आपको। तो ये आगे पीछे मत करते रहना, से थोड़ा आगे फिर प्रचार कीजिए, फिर थोड़ा आगे फिर पीछे, ऐसा कभी पहुँचेंगे नहीं हम, वही रहे वही रहेंगे। हमको भगवान को मिलना है इस जीवन में, इसलिए गंभीर होना है। बहुत ज़िंदगी अभी आगे बढ़ रही है ना, किसी का 40 हो गया, किसी का 45 हो गया, कोई 35 है, कोई 55 पे चला गया, टाइम तो जा रहा है, लेकिन इसी जीवन में एंड होने के पहले उनको प्राप्त करना है। अगर नहीं प्राप्त किया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, वापस माँ के गोद में आना है, और फिर वही बुढ़ापा, फिर वही बीमारी, फिर वही कष्ट को सहन करना है, और ये चक्र चलते रहना है। हमको उसको तोड़ना है, इसी जीवन में तोड़कर भगवान की प्राप्ति करनी है, नहीं तो ये वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगा, दोबारा मिलेगा की गारंटी नहीं है। एक तरफ सच है, ये जिंदगी मिले ना दोबारा, इट्स ट्रू, बिकॉज पता नहीं नेक्स्ट लाइफ में क्या बनकर आएंगे। आज जो मौका मिल रहा है, अभी मैं बैठ के आधा घंटा पौना घंटा बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर कुत्ते बिल्ली ऊंट गाय बैल बैठे होते तो सुन पाते क्या आधा पौना घंटा? आप ही सुन पा रहे हो, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आप मनुष्य हो, मानव हो, इसलिए ये बातें आप सुन सकते हो। इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुन जरूर सकते हो, समझ भी सकते हो इच्छा होगी तो, क्योंकि मनुष्य जीवन का ही प्रिविलेज है भगवान के विषय में जानना। और मनुष्य बनकर उनके विषय में नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? कुत्ता बिल्ली बनकर जानेंगे? नहीं जान सकते। तो इस जीवन का आप सदुपयोग करो और भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास करो। और इस जीवन में आप अगर सच्चा प्रयास करेंगे, सच्चा शुद्ध जीवन जिएंगे, तो इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इट्स अ फैक्ट। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आपका है? कोई
डॉक्टर हैं, अपने बारे में कुछ बताएंगे?
मेरे बारे में क्या बताना है, भगवान के बारे में बताना चाहिए। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। जब विद्यार्थी था तभी मैं इसमें आया, हरे कृष्ण में बहुत संघर्ष हुआ घर पे हमारे, फिर भी हमने संघर्ष किया और दीक्षा लिया फिर भगवान के गुरु जी का। फिर अभी भाग्य ऐसा हमारा है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन भी ऐसा है कि वो भगवान की सेवा में ही है, हमारा काम ही भगवान की सेवा है। पहले अलग काम करके अलग भगवान की भक्ति करते थे, किसी कंपनी में काम करते थे और शाम को या संडे को जाकर भगवान का भजन पूजन करते थे, अभी हमारा काम ही भगवान का भजन पूजन। ये सब कुछ हो सकता है, कोई चमत्कार नहीं है। क्या आपको चाहिए वो मिलेगा। आज भी आप जहाँ पर भी हो, आपने कभी चाहा था इसलिए आप आज स्थिति में हो। आपका आज का जीवन जो है ना, वो पिछली इच्छा का परिणाम है। आज आप जो भी कुछ हो, जहाँ कुछ जहाँ भी हो, आपका आज का स्टेटस जो है, आपका जो स्थिति आज का है, वो पीछे की हुई इच्छा का रिजल्ट है। और आज आप जो कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। आप जो भी कुछ हो वो पिछली इच्छा के रिजल्ट हो। हम भी जो भी कुछ है वो पीछे की हुई इच्छा का रिजल्ट है। डिजायर प्लस एक्शन इज इक्वल टू टूडेज सिचुएशन। इच्छा आपने किया, फिर उसके प्रयास किया उस इच्छा के अनुसार, तो आपको रिजल्ट मिला। मैं आप यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी कि शारजा में गोप कुमार के पास में आना है। बहुत दिन प्रयास किया, टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपके बीच में शारजा में हूँ, क्योंकि कभी इच्छा किया था, उसके ऊपर प्रयास किया, उसका रिजल्ट है कि आपके बीच में बैठा हूँ। अभी दिसंबर एंड में जयपुर में रहूँगा मैं, क्यों? क्योंकि जयपुर में यात्रा निकालनी चाहिए, ऐसे हमारा संकल्प था, फरवरी में संकल्प किया था, फिर सब उसके लिए तैयारी किया, एक्शन किया, एक्शन किया, एक्शन किया, तो अभी 225 लोगों को लेकर हम जयपुर यात्रा में 5 दिन जा रहे हैं, 25 से 29 दिसंबर को। मतलब क्या हुआ, कभी संकल्प किया था, इच्छा की थी, उस पर एक्शन किया, उसका रिजल्ट यह है कि हम आपको जयपुर में मिलेंगे क्रिसमस में। जनवरी फरवरी में आपको बरसाना में मिलेंगे, क्योंकि हर साल का हमारा संकल्प है, हम लोग यहाँ पर आई कैंप लगाते हैं, वहाँ पर राधा रानी के धाम में रहते हैं, कथा सुनते हैं, कथा बोलते हैं, लोगों को दर्शन कराते हैं, सब ब्रजवासी की फ्री सेवा करते हैं, वहाँ पर कीर्तन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं, सब कैंप में होता है हमारी। क्यों? क्योंकि हमने एक संकल्प किया था कि हर साल बरसाने में फ्री ब्रजवासियों की सेवा होनी चाहिए। तो हर साल में आपको हम फरवरी में बरसाना में मिलेंगे। तो हर स्थिति जो है ना, वो किसी इच्छा का परिणाम है। तो आपको भी अपना जीवन ऐसा भगवान के बारे में इच्छा करना है, भगवान के लिए प्रयास करना है, तो भगवान के साथ में आप अपने आप को पाओगे। कहीं भी रहो, शारजा में रहो, अमेरिका में रहो, मुंबई में रहो, अगर इच्छा भगवान की है, प्रयास भगवान के लिए है, तो जहाँ पर भी हो भगवान के साथ आप रहेंगे। जेथे जातो तेथे तुम आजा सांगाती, जहाँ जहाँ आप जाएंगे भगवान आपके साथ चलेंगे। निश्चिंत हो जाएंगे आप। ये अपना जीवन भक्ति का इतना महान जीवन है, इसमें केवल आनंद ही आनंद है। दुख के होते हुए भी आनंद मिलेगा आपको। ऐसा होता है कभी क्या? दुख होता आप रोते रहेंगे, क्या प्रभु जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन भगवान की भक्ति में रहेंगे, दुख अपने लेवल पे चलते रहेंगे, आपका आनंद का लेवल भी चलता रहेगा एक लेवल पे, टुगेदर साइमल्टेनियस। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यान्ति देवो व्रता देवान। हाँ, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, और देवताओं का लोक और देवता ये भी टेम्पररी है, उनको देवता से कोई वैर नहीं है। हम, मैं स्वयं शिव जी का भक्त हूँ, आज भी हूँ, आज भी मैं गणेश पर, मुझे बहुत श्रद्धा है भगवान गणेश के ऊपर, और देवी माँ का भी भक्त हूँ। मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही बहका नहीं रहा हूँ, हृदय से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत श्रद्धा है उनके ऊपर, बहुत आदर है और बहुत रिस्पेक्ट भी है। लेकिन पूजन मैं कृष्ण का करता हूँ, क्योंकि यू कैन कीप देम बट नॉट ऑन द मेन ऑल्टर वेयर कृष्णा इज डे। जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एवरीथिंग इज इटर्नल देयर, कोई टेम्पररी नहीं है। लेकिन देवता लोग जो है ना, ये सब लोग स्वयं उनका एक जीवन है, शुरुआत है और अंत है। नहीं तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा को बोला ना, मुझे अमर कर दो, इतना तपस्या किया उन्होंने और वरदान मांगा, तो वो क्या बोला, मुझे ना अमर कर दो। तो ब्रह्मा सबसे टॉप डेमिगॉड है, उसके ऊपर कोई डेमिगॉड नहीं है, सीधे भगवान है उसके ऊपर। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं आपको अमर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं। अगर मुझे अमर करने की शक्ति होती तो मैं पहले खुद को अमर कर लेता, इसलिए और कुछ मांग लो। फिर उसने एक लिस्ट बनाया और वो सबमिट किया, ये सोचकर कि ये मैं करूंगा, इसका वरदान मिलेगा तो मैं अमर ही हो जाऊंगा, और कैसे मरूंगा फिर। लेकिन वो सारे कंडीशन को पालन करते हुए भगवान ने उसका वध किया और वो मर गया। ब्रह्मा भी देखते रह गए, ये तो ऐसे वरदान मिले थे उसमें मरना ही मुमकिन नहीं था, लेकिन मर गया फिर भी। रावण ने भी ऐसा तपस्या किया था अमर बनने के लिए, लेकिन भगवान राम ने उसको मारा। तो पार्वती ने पूछा शिव जी को, अरे आपसे इतना वरदान प्राप्त किया तो मर कैसे रहे हो? तो बोलते, जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। और बाद में प्रहलाद को इतना मारने का प्रयास किया, लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकता है। तो वैसे देवता लोग भी टेम्पररी हैं, वो भी कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक यूनिवर्स है तब तक उसका पालन करने के लिए उनको भी पोस्टिंग मिलता है इधर, लेकिन वो भी टेम्पररी है। इसलिए यान्ति देवा व्रता देवान, उन देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं पर श्रद्धा रखेंगे तो देवता लोक में जाएंगे, और देवता लोक में कुछ समय रहेंगे। जब देवता का लाइफ खत्म हो जाएगा तो हमको भी वापस लौट के आना पड़ेगा। क्षिणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, जब वहां पर रहने का पुण्य आपका समाप्त हो जाएगा, वापस इधर बैक टू पेवले जाना पड़ेगा। लेकिन देवता लोग भगवान के बड़े भक्त होते हैं, बड़े भक्त हो भगवान के होते हैं, हमसे कई गुना अच्छे और ज्ञानी और समर्पित भक्त होते हैं भगवान के। इसलिए भगवान को वो पोस्ट पे रखते हैं, जाओ तुम दुनिया को हवा दे दो वायुदेव, जाओ तुम दुनिया को वर्षा दे दो इंद्रदेव, जाओ जाके सब वाटर रिजर्वायर का देखभाल करो वरुण देव, दुर्गा देवी, विघ्ननाशना गणेश, आपका काम डिस्ट्रॉय करने का, जब समाप्त होगा तो डिस्ट्रॉय करना आपका काम। शिव जी से बड़े बड़े काम दिए उनको, पृथ्वी को बुलाया जाओ सबको खाना खिलाओ, जो डालेंगे उसको उगाओ, फल फूल पेड़ पत्ता तैयार करो, लोगों को जितने जीव उनको खाना खिलाओ, इतना बड़ा काम है। कोई ऐसी रसोई है क्या सब दुनिया को खिलाने वाली? पृथ्वी ऐसी रसोई है, सबको खिला दिए बहुत प्रचुर मात्रा में। तो बड़े वंदनीय है ये, पूजनीय वंदनीय देवता है, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भेद के अनादर करते हैं उनको, अरे हटा दो देवताओं को सबको, वो दंडवत भी नहीं करना है, नहीं सबको प्रणाम करना है आपको आदर से। जैसे आपके पिताजी आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन अंकल को प्रणाम करते कि नहीं करते आप? اس کو پتاجی نہیں مانتے لیکن پرنام کرتے نا. پھر آنٹی آئے گی تو اس کو پیر چھوتے نہیں کیا اس کا؟ پھر نیبر کے انکل آ گئے تو اس کو پیر نہیں چھوتے؟ اس کا وندنیہ ہے لیکن مین ہمارے پتا جی. جیسے آپ کے ہسبینڈ ہے فار ایگزامپل, ہے نا, آپ کی شادی ہو گئی نا, آپ کے ہسبینڈ ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ سے بھی بہت سندر, ان سے بھی رچ, ان سے بھی پاورفل بہت لوگوں کے ہسبینڈ ہوں گے, لیکن آپ کی شردھا کس پر ہے؟ آپ کے پتی کے. اسی طرح سے ہمارے اشٹ جو ہیں وہ کرشن ہیں, باقی سب دیوتاؤں کا ہم لوگ آدر کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو من ہے, من جو ہے نا وہ ان کے چرنوں میں, کیونکہ ان کو شرن جانے کے بعد میں ان کا دھام پراپت ہوتا ہے, اور وہ دھام میں نہ مرتیو ہے, نہ جنم ہے, نہ بڑھاپا ہے, نہ بیماری ہے, نہ واپس آنا ہے, نہ کھنے پنیہ مرتلوں کے وشنتی ہے, واپس آنے کا کوئی کام نہیں. ید گتوا نہ نیورتنتے تد دھامم پرمم مبا. جب میرے دھام میں آؤ گے آپ میری پوجا کر کے, دوبارہ لوٹ کے یہاں پر دکھ بھوگنے کے لیے نہیں آتے. پرشن کا ہے آپ کا؟
ابھی آپ بتا رہے جو امر ہونے کے لیے بول رہے بھگوان کا, بھگوان دیوی دیوتا جو ہے بھگوان کا بہت بھکت ہے.
ہاں
تو ان لوگ ہمیشہ امر ہی رہیں گا نا پھر؟
نہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ امر ہی رہتے ہیں لیکن یہ دنیا میں ٹیمپرری رہتے ہیں. بھگوان ان کو واپس پوسٹنگ کریں گے, یہ سنی دنیا میں جاؤ, وہ برہمانڈ میں جاؤ, ادھر یہ سیوا کرو. آپ بھی برہما بن سکتے ہو, آپ بھی شیو جی بن سکتے ہو, آپ بھی گنیش بن سکتے ہو. وہ پوسٹ ہے, پوسٹ, گنیش ویکتی نہیں ہے, گنیش بھی پوسٹ ہے. وہ گنیش آپ بھی بن سکتے ہو, اگر آپ یوگی ہو جائیں گے تو آپ گنیش بن سکتے ہو. پھر بھگوان کے دھام جائیں گے, بھگوان آپ کو پوسٹنگ کریں گے, آپ جاؤ, یہ برہمانڈ میں آپ کو یہ سیوا کرنا ہے. یمراج بھائی ایک پوسٹ ہے, وہ بھی ایک سیوا کرنے کا پوسٹ ہے, وہاں بھگوان کو سیوا میں لگا دیتے ہیں ہم بنو. بہت بڑا سائنس ہے یہ پورا, ویری بیوٹیفل سائنس, اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. بعد میں پھر آپ کو چننا چاہیے کہ مجھے کہاں پر سرنڈر کرنا ہے, اپنے آپ کو کہاں ارپٹ کرنا ہے. اٹس اے بگ ارینجمنٹ, ایوری تھنگ از اٹریکٹیو, لیکن یو شوڈ نو ہو از اے سپریم اینڈ ویئر ٹو اپروچ اینڈ واٹ از دا بینیفٹ آف گوئنگ دیئر. جو پریم ہے نا, پریم جو آپ کو چاہیے, ہم کو چاہیے, وہ پریم کرشن کے پاس ہے, اور سب لوگ اس پریم کے لالائت ہیں. شیو جی بھی ہیں, درگا دیوی بھی ہے, گنیش جی بھی ہے, سب لوگ ورنداون میں آ کے رہتے ہیں. اتنی کہانیاں ہیں, وہ ورنداون میں رہنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں سب دیوتا لوگ, بھگوان بھی ان کو آسرا دیتے ہیں. اور کوئی پرشن ہے؟ ستو گن میں رہو آپ یا تمو گن میں رہو یا رجو گن میں رہو, جیو کا جو بدھ جیو ہے نا, بدھ جیو یعنی کہ کنڈیشن سول, باؤنڈ سول, شریر میں جو بندھا ہوا ہے, اس کے اندر چار ڈیفیکٹ رہتے ہی ہیں. کون سے ہیں وہ؟ ہماری اندریہ جو ہے نا وہ اپورن ہیں. ابھی ہم کو ایسا پکڑیں گے نا, ایسا تو دکھائی نہیں پڑے گا, ایسا آنکھ میں سامنے انگلی رکھے گا تو کچھ دکھائی نہیں پڑے گا. آکاش میں اتنا بڑا چندر ہے تو وہ آپ کو اتنا سا دکھے گا, اور یہ دیوال کے پیچھے کیا چل رہا ہے وہ سنا نہیں پڑے گا. تو آپ کے اندریہ جو لمیٹیڈ ہیں وہ ایک ڈیفیکٹ ہے آپ کے اندر. اور کیا ہے؟ چیٹ کرنے کی پروپینسٹی ہے. آل آف اس ہیو چیٹنگ پروپینسٹی, ہم لوگوں کو الو بنا سکتے ہیں, جھوٹ بول سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولیں گے, یہ کپڑا لے لو بہت سستا ہے لیکن وہ 3 سال پرانا سیکنڈ کا مال رہے گا, آپ بولیں گے بیسٹ ہے کمپنی کا, اور چیٹ کر کے بیچیں گے ہم. اور کیا ہے؟ ٹو بی الوژن. آپ کے اندر, ہمارے اندر ایک ایسا ایک موہ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو شریر سمجھتے ہیں, یہ جو ہے نا یہی میں ہوں, اور اس پر ہی دل لگاتے ہیں, اس کو موہ کہتے ہیں. اور فورتھ ون, ہاں میکنگ مسٹیکس ٹو ایر از ہیومن, ہے نا. تو مہاتما گاندھی نے بھی مسٹیک کیا تھا, بولا گیا تھا کہ مت جاؤ باہر ابھی, آپ کو شوٹ کرنے والے ہیں, پھر بھی گئے, مسٹیک ہوا, مر گئے. تو سب مسٹیک کرتے ہیں, ہر ایک آدمی مسٹیک کرتا ہے. تو یہ چار فالٹ جو ہے نا, ये आप सत्वगुण में हो या उसके अंदर वो चार फॉल्ट लगे रहते। अगर आपने ग्रीन चश्मा पहना है और बाकी सब अच्छा कपड़ा पहना है, चश्मा ग्रीन पहना है, दुनिया आपको ग्रीन दिखेगी, उस तरह से वो साई भाव है, वो खत्म ही नहीं होता है। कब खत्म होगा वो? जब आप शरीर के स्तर से ऊपर उठोगे तभी इसके फॉल्ट से मुक्त हो जाओ। और चार फॉल्ट से मुक्त होना है तो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र ये चार फॉल्ट के परे हैं, और इसमें से रोज सुनते रहेंगे ना तो धीरे धीरे हम चार फॉल्ट से मुक्त हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। क्या करेंगे? अभी आपने हमने वो स्वीकार किया है ना, क्या स्वीकार किया है? हमको भगवान से दूर रहकर एंजॉय करना है, ये आपने डिजायर किया था, इसलिए हम लोग सब इधर हैं, ये बॉडी को पहन के इधर घूम रहे हैं, भगवान को भूलकर एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, भोग ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। बहुत पहले किया हुआ डिजायर, उसके ऊपर बाद में किया हुआ प्रयास, उसका रिजल्ट है कि आज हम लोग इधर दुनिया में ये मरता हुआ शरीर पहनकर घूम रहे हैं। बदबू भी आती है, बलमूत्र भी इसके अंदर है, हाँ बुढ़ा भी हो रहा है, वो बीमार भी पड़ता है, फिर भी वो मेरा है और मैं हूँ मेरा है करके हम लोग जी रहे हैं उसके अंदर। एक दिन बुढ़ा हो जाएगा, जोड़ में दर्द होगा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक सब आएगा, फिर भी वो छोड़ने को दिल नहीं करेगा, है ना। 85 ईयर्स का एज हो गया है, चलने को नहीं हो रहा है, हार्ट अभी 15% ही काम कर रहा है, लेकिन मरने का नाम लोगे थे, मुझे नहीं मरना है, ये शरीर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। ये तो सब है, तकलीफ तो यही है सर, इतना कष्ट देने के बाद भी हम उसको छोड़ नहीं सकते, इतना मोह लगा हुआ है। तो बाहर निकलना है ना, तो भगवान का भजन करना चाहिए, उनका उपदेश सुनना चाहिए, तो उसके बाद बाहर निकल सकते। ओके, तो आज की कथा हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।